जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आज हम अपने कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए हैं। जब हम बात करते हैं हमारी जीभ की, अगर कुछ खाने में अगर आपको कोई पदार्थ पसंद आता है तो आप महसूस करते हैं कि आप उस पर आकर्षित इस हद तक हो जाते हैं कि जब तक उस जीभ को वो भोजन ना मिले तब तक वो शांत नहीं होता। लेकिन हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि उन कर्मेंद्रियों का राजा मैं आत्मा हूँ। अगर मैं नहीं चाहती, अर्थात मैं आत्मा नहीं चाहती कि मुझे इन कर्मेंद्रियों से कुछ कार्य करना नहीं है, तो वो ना करे। ऑर्डर देना सीखिए अपने कर्मेंद्रियों को। इस बात के साथ आज के हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर ओम काजी। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति,
स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में।
थैंक यू।
प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं हमारे डाइट की, इसमें किस हद तक एक सात्विकता का होना जरूरी है, क्योंकि सात्विकता ऐसा कहा गया है कि वो बहुत ज्यादा हमारे संकल्पों पर अर्थात हमारे विचारों पर राज करता है, इसका किस हद तक इसमें किस हद तक सच्चाई है?
जब हम डाइट की बात करते हैं, किस तरह का भोजन हमारा हो, पिछली कड़ियों में हमने जाना था कि नॉन वेजिटेरियन खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे मेंटल लेवल पे उसके क्या नुकसान होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे क्या नुकसान होते हैं। वहीं हमें दूसरे प्रकार के भोजन, उनके ऊपर भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। हमारी जो इंडिया की क्लासिकल मेडिकल साइंस आयुर्वेदा है, उसके अकॉर्डिंग भोजन को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक भोजन वो है जिसे हम सतोगुणी भोजन कहते हैं, सात्विक भोजन कहते हैं, वो भोजन जो हमारे आत्मा के सात गुणों को, ओरिजिनल क्वालिटीज को बढ़ाए, जिसमें हमारे अनाज हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, दूध दही और मेवे हैं, ये सारी चीजें सात्विक भोजन में आती हैं, जो हमें सुकून देता है, जो हमें हमारे माइंड और बॉडी को हील करता है। दूसरी तरह का भोजन है जिसे राजसिक भोजन कहते हैं।
अच्छा।
राजसिक भोजन माना ज्यादा मसालेदार, ज्यादा चटपटा, ज्यादा मिर्चदार, आचार, सड़ा हुआ भोजन, बासी भोजन, उसको राजसिक भोजन कह देते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन करना चाहिए, राजसिक भोजन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, और एक तीसरा कैटेगरी का भोजन है जो है तामसिक भोजन, जो बिल्कुल डल और डेड भोजन है, जो हमें कोई एनर्जी नहीं देता, अगर एनर्जी देता भी है तो नेगेटिव एनर्जी देता है, जिसमें ये नॉन वेजिटेरियन खाना, मीट, फिश, एग्स, यहाँ तक कि आनियन और गार्लिक, प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन में माना जाता है।
अच्छा, प्याज और लहसुन भी?
प्याज और लहसुन भी तामसिक का मतलब जो हमारे अंदर तमो गुणों को बढ़ाए, जो अंधेरे की तरफ हमें ले जाए, जो हमें बुराइयों की तरफ मोटिवेट करके ले जाए, उसे तामसिक भोजन कहते हैं। तो इंसान को तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा आहार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए।
पर प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं तामसिक भोजन की, तामसिक भोजन होता क्या है? जब मैं बात करूं तामसिक भोजन की, उसके अंदर में ऐसी क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुझे तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए?
जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की कि नॉन वेजिटेरियन खाना तामसिक भोजन में आता है, जो हमें तामसिक मतलब तम मतलब अंधेरा, और अंधेरा अज्ञानता को कहा जाता है, बेसमझी को कहा जाता है, मूर्खता को कहा जाता है। तो जो चीज हमें गलत रास्ते पे ले चले या गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रवोक करे, उधर हमारा खिंचाव हो, हमारे अंदर उस तरह की चेंजेस बॉडी में आ जाएं, तो उसे तामसिक भोजन कहते हैं। तो वो तामसिक भोजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा मन शांत रहे, स्थिर रहे, मन की प्योरिटी रहे, हमारे मन में जेलसी, हेटर्ड, टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष कुछ ना हो, तो उसके लिए हमें तामसिक भोजन को जीरो करके, रासिक भोजन कम से कम करके और सात्विक भोजन ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए।
प्रोफेसर साहब, आपने कहा था कि नॉनवेज इसीलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव पदार्थ होते हैं और हम उनका कत्ल करके उनकी लाश को खाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक है और मॉरली भी रॉन्ग है। लेकिन अगर मैं धरती से उगते हुए प्याज और लहसुन को खाते हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो नेचुरल है, वेजिटेरियन भी है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है?
जहां तक ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन की बात है, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये वेजिटेबल्स हैं, ये धरती से ही उगती हैं। जब धरती से उगा हुआ आलू हम खा लेते हैं, धरती से उगे हुए पेड़ में जब आम या सेब लगते हैं उन्हें हम खा लेते हैं, तो प्याज और लहसुन खाने में क्या बुराई है? अनायका जी, मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, जितनी भी चीजें धरती से पैदा होती हैं सभी खाने लायक नहीं है। इसी धरती से जहरीली जड़ी बूटियां भी निकलती हैं, इसी धरती से अमर फल जैसी एक बेल भी निकलती है जो बहुत लाभकारी होती है, बहुत गुणदायी होती है। इसी धरती से जितने भी नशीले पदार्थ हैं जिन्हें इंसान का सेवन नहीं करना चाहिए, अफीम, गांजा, भांग, जितने भी हैं, कोकीन, सब धरती से ही निकलते हैं। और हर एक बीज की एक कैपेसिटी है, कैचिंग कैपेसिटी है कि वो धरती से क्या लेता है। धरती में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई ना कोई बीज, हर बीज अपने हिसाब से उन तत्वों को अपनी ओर खींचता है। धरती में आप करेला बीज दो, करेले के गुण क्या है, करेला कड़वा पदार्थ खींच लेगा। उसी धरती से अगर आप मिर्च लगा लो तो मिर्च का बीज क्या खींचेगा, तीखापन खींच लेगा। उसी धरती में आपने आम का फल लगाया तो आम वहां से मीठापन खींच लेगा। वहीं पर आपने गुलाब का फूल लगाया वो खुशबू खींच लेगा। तो धरती वही है, लेकिन हर बीज अपने अपने हिसाब से वहां से खींचता है। सेब का पेड़ और मिर्च का पेड़ कट्ठे कट्ठे भी लगा लो, दोनों की जड़ें भी इकट्ठी हो, फिर भी मिर्च के अंदर सेब की मिठास नहीं आएगी और सेब के अंदर मिर्च का वाला तीखापन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बीज की अपनी कैपेसिटी है। उसी तरह जो प्याज है, लहसुन है, उनके बीज की क्या कैपेसिटी है, वो क्या कैच करते हैं, वो क्या खींचते हैं धरती से, वो तमोगुण खींचते हैं, वो तीखापन खींचते हैं। इसलिए आपने कभी देखा हो कि प्याज जब हम काटते हैं तो उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी आंखों में जब जाते हैं तो
आंसू
आ जाते हैं। अब आप देखिए, जो चीज आपको काटते वक्त ही रुला रही है वो जब आप खाएंगे तो क्या आपको करेगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
प्रोफेसर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि देवताओं को कभी भी प्याज और लहसुन नहीं हम भोग लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
ये भी आपने सही कहा कि हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं, उसके अकॉर्डिंग जब भी किसी देवी देवताओं को हम भोग लगाते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी भोग लगाते हैं, तो कहीं पर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्याज लहसुन उस भोजन में डालते ही नहीं है। इसका पीछे कारण ये है कि देवी देवता कभी भी बदबू वाली चीज स्वीकार नहीं करते, वो प्योर हैं, तो प्योर आत्मा को प्योर भोजन ही दिया जाता है। अब हमें भी प्योरिफिकेशन के रास्ते पे चलना है, हमें भी तो अपने मन को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, शांत बनाना है, इसलिए हमें वहां से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम नवरात्रों के दिनों में, किसी त्योहार के दिन, किसी व्रत के दिन, जिनको हम एक पवित्र दिन कहते हैं, उस दिन इन चीजों को अवॉइड करते हैं, तो क्यों ना हम हर दिन को पवित्र दिन समझ के परमानेंट इनको छोड़ें। प्याज और लहसुन इतनी बदबू वाली चीज है, आप देखेंगे जो लोग इनके हैबिचुअल होते हैं, जो खाते हैं शायद उनको पता ना चले, लेकिन जो नहीं खाते हैं, हमसे आप पूछिए, हम कभी ऐसी किचन में जाएं जहां पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल हो रहा हो तो वहां दूर से ही तीखी स्मेल आती है और इतनी बदबू आती है कि वहां दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है कि यहां से जितनी जल्दी हो सके भागे। तो ऐसी वो स्मेल वाली चीज, बदबू वाली चीज जो हमें रुलाए, हमें बुराई की तरफ ले जाए, जो देवी देवताओं को अच्छी आत्माओं को पेश नहीं की जा सकती, तो हम उसे अपने भोजन में क्यों स्वीकार करें।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम बात करते हैं हमारे देवताओं की, उन्हें भी हम लोग ये नहीं देते। साथ ही साथ आपने कहा कि उनसे हमारे संकल्पों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, और उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो आपको दूर से ही पता चल जाएगी, और वो काफी देर तक भी रहती है हमारे शरीर के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रोफेसर साहब, जब हम बात करते हैं प्याज और लहसुन की, अब इसके नुकसान क्या क्या है? मैंने माना कि इससे हमें स्ट्रांग स्मेल आती है जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ आंसू भी निकलते हैं। और कौन से नुकसान है जो हम नहीं जानते?
इसके इतने ज्यादा नुकसान है कि मैं आपको गिनाने लगूं, कुछ एक आपको बता देता हूं। जहां तक अभी कोई रिसर्च भी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी प्याज और लहसुन में कुछ इस तरह के केमिकल्स, कुछ इस तरह के चीजें मिलती हैं जो हमारी बॉडी में एक ब्रेन और एक ब्लड, ब्रेन ब्लड की जो बैरियर है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। सल्फोन हाइड्रोक्साइल आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो पेनिट्रेट करके क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उन ब्रेन सेल्स को पॉइजनस बना देते हैं, जो हमें बहुत नुकसान करते हैं। साथ में कुछ रिसर्च ऐसी भी हुई है कि ये ब्रेन वेव्स को डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं, जिससे क्या रिजल्ट आता है कि हमारा जो रिस्पांस टाइम है, जब हमें कोई काम करने के लिए कहा जाता है उसके लिए जो रिस्पांस, कितने देर में हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम आनियन और गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे देखा गया है कि उसमें 5 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर कुछ इस तरह के हार्मोन्स की सिक्रेशन करते हैं जिससे हमारे अंदर ज्यादा एंगर, ज्यादा लस्ट, ज्यादा नेगेटिविटी और ज्यादा एग्रेशन आती है। ज्यादा उत्तेजना आती है, ज्यादा एग्रेसिव हम हो जाते हैं, ज्यादा इरिटेट हम होते हैं, ज्यादा एजिटेशन आती है। तो ये चीजें हमें, हमारी जो हम चाहते हैं कि हमारे मन में शांति रहे, सुख रहे, हम टेंशन में ना आए, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह के नुकसान इन चीजों के सेवन से होते हैं।
जी प्रोफेसर साहब, हेल्थ वाइज वैसे तो हमने जनरली समझ लिया मेंटली हमारे लिए कितने ज्यादा वो हानिकारक है, क्योंकि हमारे अंदर में अलग अलग फीलिंग्स उत्पन्न करते हैं जो कि नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग फॉर अस। पर हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है? जब हम हेल्थ वाइज कहा जाए तो फिर प्याज लहसुन हेल्थ वाइज तो कहा जाता है बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो उसमें क्या गलती है?
हाँ, ये भी लोग कहते हैं, ये भी मान्यता है कि प्याज लहसुन के बहुत से मेडिसिनल वैल्यूज हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन एक है फिजिकल हेल्थ, एक है हमारी मेंटल हेल्थ, एक है इमोशनल हेल्थ और एक है स्पिरिचुअल हेल्थ। और जो 3 हेल्थ मैंने लास्ट की बोली, उनके लिए ये कभी भी हेल्दी नहीं है। नो डाउट इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, कुछ ना कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इससे फायदे होते हों, ऐसा कहते हैं। थोड़ी बहुत इसके ऊपर लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन कुछ सॉलिड रिसर्च नहीं हुई है। रिसर्च में उन्होंने देखा कि 30 दिन तक इनका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा नीचे आ गया, ये बीमारियों का लेवल थोड़ा कम हो गया। लेकिन किसी और ने रिसर्च की तो लंबे टाइम के लिए जब रिसर्च की तो पता चला कि वो जो पहले कम हुआ था कोलेस्ट्रॉल का लेवल, वो बाद में दोबारा उतना ही हो गया। इसलिए ये कोई साइंटिफिक इस तरह की कोई ज्यादा रिसर्च इस फील्ड पे हुई नहीं है कि ये हमें हेल्थ बेनिफिट देता है या ज्यादा मेडिसिन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके कुछ इस तरह के बेनिफिट्स होते भी हों, एज ए मेडिसिन भी इसको हम सोचें, तो अब आप सोचिए कि मेडिसिन का इस्तेमाल इंसान कब करता है? बीमार होने पे करता है कि बिना बीमार हुए कर लेता है? अगर हम प्याज लहसुन रोज कर रहे हैं, इसका मतलब अभी तो हम बीमार हुए ही नहीं है। दूसरा, दुनिया में ज्यादातर लोग प्याज लहसुन तो खाते ही है, फिर वो बीमार क्यों है? अगर इसके इतनी ज्यादा दवाई के रूप में इसकी वैल्यू है तो वो बीमार क्यों होते हैं? मान लीजिए अगर ये एक अच्छी दवाई भी है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी मेडिसिन है जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। साइड इफेक्ट के तुलना में उसके जो बेनिफिट होने वाले हैं वो बहुत कम है। वो बेनिफिट आप किसी और चीज से भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जो हमें बुराई की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, तमोगुण की ओर ले रहे हैं, और हमारा मानना है कि ये सात्विक भोजन नहीं है, कोई भी भक्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की तरफ अपना मन लगाना चाहे, मन में शांति चाहता हो, मन को एकाग्र करना चाहता हो, उसके लिए ये भोजन बहुत वंचित है।
जी प्रोफेसर साहब, अब हम बात करना चाहते हैं वेजिटेरियन, नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, होटल, हाँ करेक्ट। प्रोफेसर साहब, अब हम बात करना चाहते हैं होटल फूड की। बहुत चटपटा होता है, बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी भी होगा। अगर मैं वहां जाके सैलेड खा रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो आपके हिसाब से अगर मैं हेल्दी फूड होटल में खा रही हूँ तो उसमें क्या खराबी है?
होटल्स के खाने में और घर के खाने में दिन और रात का अंतर है। जो हम भोजन खाते हैं उसको हम तीन कैटेगरी में आजकल के हिसाब से बांट सकते हैं। एक वो भोजन है जो हम होटल्स में, हम पार्टीज में या कहीं मैरिज में गए, वहां चटपटा स्वादिष्ट कई तरह का बना हुआ, कई तरह के व्यंजन उसमें होते हैं, उसको लेते हैं। एक वो भोजन है जो हम घर में अपनी माँ के द्वारा लेते हैं, परिवार में बनता है। और एक वो भोजन है जो किसी मंदिर गुरुद्वारे में तैयार किया जाता है, जिसे लोग प्रसाद कहते हैं। अब तीनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वो भोजन जो बाहर बनता है, होटल्स में बनता है, उसको लेने के लिए हमें इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए कि वहां जाके आप कभी देखिए कि वो किस माहौल में तैयार किया जाता है, वहां का जो बनाने वाले लोग हैं क्या वो नीट एंड क्लीन है। कभी आप कुकिंग उनकी जहां हो रही हो किचन में जाके देखिए। अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी, अच्छे से अच्छे फाइव स्टार होटल्स में भी आपको लगेगा वो हाइजेनिक फूड नहीं है। वो लोग किस तरह के पसीना आ रहा है, कितने गंदे हैं, कभी नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, और जो काम करने वाले लोग मेन वो लेबर क्लास के लोग, और वो उनके जीवन में इतनी खिंचातानी होती है पैसे के लिए, साथ में बाहर उनको फुटपाथ पे सो गए, वहीं रह लिए और वहीं बाद में खाना बनाने लग गए, बाहर रेडी लगा ली या ढाबा खोल लिया, रेस्टोरेंट भी खोल लिया, मान लो थोड़ा बहुत नीट क्लीन हो भी, लेकिन वहां का जो माहौल है, किस मूड में, किस माहौल में, किस थॉट सिस्टम को लेके वो खाना बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाहर का भोजन और घर का भोजन, आपके पास वही हलवा है, एक हलवा आपको बनाया गया बाजार में, एक हलवा दिया गया माँ द्वारा, एक दिया गया प्रसाद के रूप में। अब जो हलवा बाजार में आपने लिया, वो चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन वो कभी तृप्ति आपको नहीं देगा, कभी भी आपके अंदर वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि उसके पीछे एक भाव है पैसा कमाना। हर चीज बाजार में मिल रही है, हर डिश पे होटल में एक प्राइस टैग लगा दिया गया है कि ये 200 रुपए की है, ये 300 की है, ये 500 रुपए की है, और उनका एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा बिके और हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। तो पैसा कमाने की उनकी जो होड़ है, उसको खाते खाते उस भोजन के द्वारा वो होड़ हमारे अंदर भी आ जाती है, हमारे अंदर भी वही मारा मारी पैसे के लिए लग जाती है। इसलिए जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम अपने जीवन में ला रहे हैं, उसके थॉट सिस्टम को साथ में उतार रहे हैं अपने साथ, उसके द्वारा बने हुए भोजन के द्वारा।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इसकी हम बात करें वेजिटेरियन की, तो उसके अंदर भी जब हम बात कर रहे हैं लोगों की जो बना रहे हैं खाना, उनके संकल्प का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि जिस थॉट सिस्टम को लेके, जिस फीलिंग्स को लेके हम खाना बनाते हैं, भोजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फीलिंग्स, मूड। एज इज योर मूड सो इज योर फूड। अन्न का मन के ऊपर भी असर पड़ता है और मन का अन्न के ऊपर भी असर पड़ता है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। जिस मन स्थिति में, जिस सोच में, जिस मन के द्वारा आप खाना बनाएंगे, वो आपका भोजन वैसा बनाएगा। मन से अन्न भी बना और खाने वाले ने जो अन्न खाया उसका मन फिर उस खाने से बना, दोनों इंटरकनेक्टेड है। जो आपने कहा कि मन की स्थिति, क्या थॉट सिस्टम लेके हम वो भोजन बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज हम किसी के घर में गए और जिसके घर में हम गए वो रिसेप्टिव नहीं है हमारे लिए, उसकी हमें देखते ही उसकी नजरें टेढ़ी हो गई। अब उसने हमारे लिए कई तरह के व्यंजन बना के रख दिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे से हमारे साथ बिहेव नहीं कर रहा और वो व्यंजन बड़े अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं, हमारी पसंद के भी हैं। अब आप उसके घर में वो खाना खाना आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा?
बिल्कुल नहीं।
आप अवॉइड करेंगे। और सिमिलरली आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर गए, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, वेलकम किया गया खाने के लिए, हालांकि उन्होंने ज्यादा ना देके सिंपल दाल रोटी भी दी, तब भी आप उसको पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वो एक अच्छी फीलिंग के साथ आपको दी गई, वो मन की स्थिति का असर उसका हमारे ऊपर पड़ता है
जी।
अब मंदिर का जो भोजन है, गुरुद्वारे का भोजन है, क्यों लोग पसंद करते हैं, क्यों उस प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं, उसमें ऐसी क्या बात है? उसमें मेन बात ये है कि वो अच्छे विचारों के साथ बनाया जाता है।
करेक्ट।
अच्छे विचार लेके, अच्छी फीलिंग के साथ कि इस भोजन को जो खाएगा उसका मन शुद्ध होगा, ये सबके लिए है। आपने देखा लेडीज प्रसाद लेके आती हैं और घर में थोड़ा थोड़ा करके सबको देती हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि वो प्रसाद है, वो भगवान के लिए बनाया गया है, भगवान की याद में रह के बनाया गया है। ऐसे ही जब हम भी घर में खाना बनाएं, उस घर के खाने को प्रसाद बना सकते हैं।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जब भी खाना बनाना है तो हमें ये जिम्मेवारी समझकर बनाना है कि हम कहीं भी कोई भी चीज संकल्पों में गलत ना लेकर और फिर ना बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो वो सारे संकल्प हमारे चले जाएंगे भोजन के अंदर और उससे वो जो खाने वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर भी वही संकल्प आने लगेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि होटल्स में खाना खाना ये किस हद तक हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो वो जब बना रहे हैं भोजन तो वो पैसे के लिए बना रहे हैं, दूसरी बात उनकी साफ सफाई बहुत ज्यादा मायने रखती है जो नहीं होती है बड़े से भी बड़े होटल में, और तीसरी बात जो आपने कही कि उनके जो संकल्प है वो हमारे अंदर जाते हैं। अगर वो चोरी की भावना से संकल्प, चोरी की प्लानिंग करते हुए अगर भोजन बनाएंगे तो शायद हमारे अंदर भी उसी तरह के नेगेटिव सोच आने लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतनी सारी खूबसूरत बातें आपने बताई हमें, उसके लिए शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, भोजन ये हमारे जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। जब वो चीज हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर में कई सारे संकल्प पैदा करती है, इसीलिए तामसिक भोजन जिसमें प्याज और लहसुन आता है, ये कहने के लिए तो वेजिटेरियन है लेकिन वो तामसिक में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उससे आपके अंदर में ऐसे ऐसे संकल्पों की उत्तेजना होती है जो आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक है। नेगेटिव सोच आपके लिए अच्छी नहीं है और वो नेगेटिव सोच आपको तामसिक भोजन से मिलती है। दूसरी बात, होटल में खाना खाना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो भी आपको प्योरिटी से और पूरी शुद्ध भावना से बनाकर नहीं दे रहे होते हैं, वो सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली अपने आप को बेटर करने के लिए बना रहे होते हैं। तो आप घर का खाना खाइए, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाइए और वही खाना खाइए जो भगवान की याद में बनाया हुआ हो। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।